بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر ناظرین، السلام علیکم۔ علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے فلسطینی عوام کی صہیونیت مخالف جد و جہد اور تحریک انتفاضہ قدس۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، تو ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جہاں ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے مسجد الاقصیٰ پر مسلسل صہیونی انتہا پسندوں اور صہیونی فوجوں کے حملے جاری ہیں، اور مسجد الاقصیٰ جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے وہ اس وقت انتہائی خطرناک صورتحال سے دوچار ہے۔ لیکن افسوس کہ عالم اسلام اور خاص طور پر جو اپنے کو سب سے بڑے مسلمان ہونے کے دعوے دار ممالک کے سربراہان ہیں، جن میں سعودی عرب کا نام بھی لیا جا سکتا ہے خاص طور پر، ان ملکوں کی طرف سے مسجد الاقصیٰ یا مسلمانوں کے قبلہ اول کی ہو رہی بے حرمتی کے خلاف کسی قسم کی کوئی آواز، احتجاج یا اعتراض نہیں سامنے آیا ہے اور نہ ہی آ رہا ہے۔ اس درمیان فلسطینی مسلمانوں نے اب اپنے طور پر خود اپنا دفاع اور مسلمانوں کے قبلہ اول کا دفاع کرنے کے لیے کمر ہمت باندھ لی ہے۔ اب تک تو غزہ کے عوام ہی صہیونیت مخالف جد و جہد میں پیش پیش تھے، لیکن اب تحریک انتفاضہ قدس غرب اردن تک بھی پھیل گئی ہے، اور اب غرب اردن کے فلسطینی مسلمان بھی صہیونیت مخالف جد و جہد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ اور جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اپنے کل کے خطاب میں فرمایا کہ یہ انتفاضہ شروع ہو چکی ہے جو اب جاری رہے گی، کیونکہ غرب اردن کے فلسطینی عوام بھی پوری طرح سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس درمیان اطلاع یہ ہے کہ آج جمعرات کو بھی غاصب صہیونی فوجوں نے ایک اور فلسطینی کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے، جبکہ مسجد الاقصیٰ پر ان کے حملے مسلسل جاری ہیں۔ تحریک انتفاضہ قدس کو شروع ہوئے کئی ہفتے ہو چکے ہیں، اس درمیان اب تک صہیونی فوجوں کے ہاتھوں کم سے کم سو یا اس سے کچھ زائد ہی فلسطینی نوجوان شہید ہو چکے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ہو چکے ہیں، بڑی تعداد میں فلسطینی مسلمانوں کے گھر منہدم کیے جا چکے ہیں۔ لیکن فلسطینی عوام کی جائز مسلمہ اور قانونی جد و جہد کے سامنے اس وقت اب پوری دنیا نے بھی سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور ان کی جائز جد و جہد کو وہ اعتراف کر رہی ہے اور تسلیم کری۔ چنانچہ ابھی کل کی بات ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینیوں کے حق میں کئی قراردادیں منظور کیں، جبکہ صہیونی حکومت کی مذمت میں کئی قراردادیں بھی پاس کیں۔ بہرحال اب کہا یہ جا سکتا ہے کہ فلسطینی عوام عالمی سطح پر یک و تنہا نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ کہا جائے کہ بعض مسلم ممالک، یا یوں کہا جائے کہ بیشتر مسلم ممالک طرف سے انہیں کوئی حمایت نہیں مل رہی ہے، تو شاید یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ یہ جو مسلم ممالک ہیں یا خاص طور پر عرب ممالک ہیں، ان کی طرف سے فلسطینی مسلمانوں کو کیوں مدد نہیں مل رہی ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اپنے بدھ کے روز کے خطاب میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ جیسے بھی ہوگا ہم فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھیں گے، اور مظلوم فلسطینیوں کی حمایت سے ذرا برابر بھی دریغ نہیں کریں گے۔ ہمارے ساتھوں نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ ترتیب دی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
فلسطین میں تحریک انتفاضہ جاری ہے، جس میں 20 سے زائد صہیونی ہلاک ہو چکے ہیں اور 300 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ غرب اردن اور بیت المقدس سمیت متعدد مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں صہیونیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تیسری تحریک انتفاضہ عوامی سطح پر شروع ہوئی ہے اور اس سے صہیونی حکومت پر خوف طاری ہے۔ ادھر انتفاضہ قدس شروع ہونے کے بعد صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں 90 سے زیادہ فلسطینی شہید اور 2700 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ دریاسنا رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنہ نے کہا ہے کہ سامراجی محاذ کا اصلی ہدف فلسطین کے اعلیٰ اہداف و مقاصد کو فراموش کر دیا جانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ استکباری محاذ کی تمام تر کوششوں، یہاں تک کہ عرب حکومتوں کی طرف سے اس محاذ سے تعاون کے باوجود، غرب اردن میں فلسطین کے عوام کی تحریک انتفاضہ شروع ہو چکی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مسئلہ فلسطین کے بارے میں استکباری محاذ کے ذرائع ابلاغ کی ظالمانہ کارکردگی پر تنقید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ میڈیا ان عوام کو جو اپنی سرزمین پر غاصبانہ قبضے اور اپنے گھروں کے انہدام کے خلاف احتجاجاً پتھراؤ کرتے ہیں، دہشت گرد قرار دیتا ہے، اور اس گروہ کی حمایت میں جس نے فلسطین کی زندگی اور عزت و آبرو چھین لی ہے، کہتا ہے کہ وہ اپنا دفاع کر رہا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ مسئلہ فلسطین کے بارے میں یہ رویہ اور یہ سوچ کیا معمولی غلطی اور کیا کوئی چھوٹا ظلم ہے کہ اسے آسانی سے نظر انداز کر دیا جائے اور اس سلسلے میں لا تعلق رہا جائے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے زور دے کر فرمایا کہ ہم فلسطینی عوام کی تحریک کا اپنی پوری طاقت سے اور جب بھی جس طرح بھی ممکن ہوا دفاع کریں گے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں فلسطین کے نمائندے ریاض منصور نے خبر دی ہے کہ اس ادارے میں فلسطین کے حق میں 5 قراردادیں منظور کی گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ریاض منصور نے کہا کہ اقوام متحدہ میں فلسطین کے حق میں منظور ہونے والی قراردادوں کی حمایت میں 99 ووٹ ڈالے گئے، جبکہ امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا سمیت 7 ملکوں اور صہیونی حکومت نے اس کی مخالفت میں ووٹ ڈالے۔ ادھر 59 رکن ملکوں کے نمائندوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ ریاض منصور نے فلسطین کے حق میں ووٹ ڈالنے والے ملکوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان قراردادوں کو بھاری ووٹوں سے منظوری سے ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے کہ عالمی برادری ملت فلسطین کے حقوق، بالخصوص انہیں اپنی تقدیر کے فیصلے اور اپنے وطن واپسی کے حق کی حمایت کرتی ہے۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے نمائندے نے فلسطین کی حمایت میں اس بین الاقوامی قراردادوں کو غاصبانہ قبضے کے خاتمے اور خود مختار فلسطینی ملک کی تشکیل کے لیے، کہ جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو، جد و جہد کے مضبوط ہونے کا باعث قرار دیا۔
جی ناظرین، چلتے ہیں اس وقت سیدھے کراچی اسٹوڈ، جہاں پر موجود ہیں پاکستان میں فلسطین فاؤنڈیشن کے رہنما جناب صابر کربلائی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ صابر کربلائی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کئی ہفتے گزر چکے ہیں تیسری تحریک انتفاضہ قدس کو، اس انتفاضہ یا اس تحریک کو آپ کس سمت جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 اکتوبر سے شروع ہونے والی مظلوم فلسطینیوں کی تحریک انتفاضہ القدس، کہ جس کا بنیادی اور واضح مقصد جو ان کی تحریک میں بھی نظر آتا ہے، وہ مسجد اقصی یعنی قبلہ اول کو غاصب صہیونی ریاست کے شکنجے سے بچانا اور غاصب صہیونیوں کے ان حملوں سے اس کا دفاع کرنا ہے، کہ جس کا سلسلہ انہوں نے گزشتہ ماہ شروع کیا تھا، اور نہ صرف صہیونی افواج بلکہ اس کے ساتھ جو صہیونی آبادکار ہیں، کہ جن کو دنیا کے مختلف کونوں سے اور گوش و قرار سے لا کر سرزمین فلسطین پر غاصب اسرائیلی ریاست کے نام پر ان کو آباد کیا گیا ہے، ان دونوں کے حملوں سے ہی قبلہ اول کو بچانا، یعنی قبلہ اول کا دفاع کرنا جو ہے وہ اس تحریک کا سب سے بنیادی مقصد سامنے آیا تھا۔ اور آج جبکہ 2 ماہ کے قریب کا عرصہ جو ہے اس کو گزرنے والا ہے، اور 101 کے قریب شہادتیں فلسطینی عوام دے چکے ہیں، اور آج میں ہی ایک رپورٹ کا مطالعہ کر رہا تھا کہ جس میں 12,000 سے زائد افراد جو ہے وہ صہیونی افواج کی دہشت گردی کا نشانہ بن کر وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ زخمیوں کو ہسپتال بھی لے جانے کی اجازت نہیں ہے وہاں پر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک جو ویسٹ بینک سے شروع ہوئی ہے، کہ جس کا اندیا پہلے بھی جو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی صاحب نے دیا تھا، کہ اب جو ہے وہ مغربی کنارے سے بھی تحریکیں اٹھیں گی، جس طرح کے غزہ کے عوام نے ریزسٹنس کر کے سن 2008 اور 12 اور 14 میں صہیونیوں کو شکست دی تھی، اور اب الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تحریک اپنے اس مقصد کی جانب گامزن ہے، اور اس میں آئے دن کمی نہیں واضح ہو رہی، بلکہ اس میں مزید جو ہے وہ ترقی کی طرف یہ جا رہا ہے، جس کو کہا جائے کہ مزید آگے کی طرف یہ بڑھ رہی ہے یہ تحریک۔ اور اس میں بالکل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو فلسطینیوں کی جو عوام کی جو باڈی لینگویج ہے، اور جو ان کا رویہ ہے، اور جو وہ سڑکوں پر اور گلی کوچوں کے اندر جس طرح سے وہ ہاتھوں میں پتھر لیے، چاقو لیے، کچن نائف لیے، और स्क्रू ड्राइवर टाइप की चीज़ें लिए हुए जो वो वहाँ पर जो है सड़कों पर मौजूद हैं, और गासिब इसराइली अफवाज को जो है वो उनके हमलों के जवाब में इसको निशाना बना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये तहरीक दिन ब दिन जोर पकड़ रही है और इंशाल्लाह ये तहरीक मजीद जो है वो जोर पकड़ती रहेगी। बस ज़रूरत इस बात की है कि अब हमारे ये जो फ़लस्तीनी भाई हैं इन्होंने फ़लस्तीन के अंदर रहते हुए क़िबला अव्वल के दिफा के लिए अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों को इन्होंने अदा किया है, यानी ये सड़कों पर हैं, इन्होंने अपने घरों से बाहर निकल आए हैं, अपने बच्चों को, अपने जवानों को, बहनों को, माओं को कुर्बान किया है। अब ज़रूरत इस बात की है कि इनकी इस तहरीक को उस तरह से सपोर्ट मिलनी चाहिए थी कि जिस तरह मुस्लिम उम्मा का फ़र्ज़ बनता है कि पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम मुसलमान एक जसद वाहिद की तरह हैं, कि अगर जिस्म के एक हिस्से में भी तकलीफ़ हो तो दर्द या उसकी तकलीफ़ जो है वो पूरा जिस्म महसूस करता है। तो मैं बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि मुस्लिम उम्मा, आलमी बिरादरी की तो आप बात ही छोड़ें, वो तो खयानतकार है, दुश्मन है। आप, मैं कहता हूँ कि मुसलमानों ने भी, मुस्लिम दुनिया ने भी वो किरदार अदा नहीं किया जो उसको इस तहरीक की सपोर्ट में, इस तहरीक की हिमायत में करना चाहिए था। मैं आज आपके ही टीवी चैनल के तवसुल से ये सवाल उठाता हूँ पूरी दुनिया के लिए कि कोई मुझे बताए कि क्या फ़लस्तीनियों ने कभी आज तक किसी भी मुस्लिम मुल्क से ये कहा कि हमें पैसों की मदद चाहिए या हमें माली मदद चाहिए या हमें मुसल्ला मदद चाहिए। नहीं, फ़लस्तीनियों ने कभी इस बात की डिमांड नहीं की। तो फिर क्या वजह है कि हमें जो अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए थी, जो हमारा एक इखलाकी शरई दीनी मजहबी फरीदा था कि जो हमें अदा करना चाहिए था, वो हमने 67 बरसों के अंदर क्यों अदा नहीं किया? क्यों जो है वो आखिर तन ममालिक से ही मुस्लिम ममालिक ही, जिनमें ईरान सर फहरिस मैं समझता हूँ कि है कि जिसने रोज़े अव्वल से फ़लस्तीनियों की इस तहरीक को जो है वो अपने हाथों में ले रखा है और इसकी हिमायत कर रहा है। इसी तरह पाकिस्तान को भी मैं किसी हद तक ये समझता हूँ कि ये क्रेडिट जाता है कि बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना ने क़याम पाकिस्तान से कबल ही इस सहूनिज़म के ख़तरे से जो है वो पाकिस्तान के यानी मुसलमानों को, बरसगीर के मुसलमानों को इसकी तरफ मुतवज्जे किया था। खुद अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के अंदर भी इस सहूनिज़म के ख़तरे से मुतवज्जे किया था। तो मैं समझता हूँ कि दूसरे मुस्लिम ममालिक को भी निकलकर सामने आना चाहिए, उनकी क़यादतों को, उनके हुक्मरानों को, और इस बढ़ती हुई तहरीक को, इस ये जो बढ़ती हुई तहरीक है कि जिसको इन्होंने इंतफादा अलकुद्स का नाम दिया है, इसकी जिस कदर भी हो सके मैं समझता हूं कि हमें हर सतह पर
शुक्रिया आपका साबिर
साहब, हिमायत करनी चाहिए, इसकी खुलकर हिमायत का सरकारी सतह पर भी ऐलान होना चाहिए और एनजीओस के सतह पर भी इसका भरपूर तरीके से ऐलान होना चाहिए और दुनिया भर के अंदर लोगों को जो है वो इसके हकाइक से आश्कार किया जाना चाहिए।
बहुत शुक्रिया। मैं फिर हाजिर आपकी खिदमत में चलते हैं इस वक्त दिल्ली स्टूडियो जहाँ पर मौजूद हैं हिंदुस्तान के सीनियर और सरकर्दा तर्जनगार जनाब कमर आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब कमर आगा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मस्जिदुल अक्सा पर तो सहयूनियों के जो आबादकार जिन्हें कहा जाता है इंतहा पसंद, उनके हमले तो माजी में भी होते रहे वक्फे वक्फे से, लेकिन खुद जो फिलिस्तीनी अवाम है उन पर जो जुल्म और जारहियत होती थी बाकायदा वो सैनी फौजियों की तरफ से ज़्यादा होती थी, लेकिन पिछले चंद महीनों से ये देखा जा रहा है कि अब सैनी फौजियों के साथ साथ जो सैनी आबादकार इंतहा पसंद उनके हमले काफ़ी बढ़ गए हैं फिलिस्तीनी शहरियों के खिलाफ, उनके मकानात पर उनके हमले होते हैं, उनको ज़िंदा जलाया जाता है, उनके बच्चों को ज़िंदा जला दिया गया गर्ब उर्दू में पिछले दो महीने कबल की बात है, तीन महीने कबल की बात है। तो ये जो अचानक सैनी आबादकारों के हमले जो बढ़े हैं फिलिस्तीनी अवाम पर, फिलिस्तीनी शहरियों पर, इसके पीछे आप कौन सा मंसूबा या कौन सी साजिश या कौन सा हदफ देख रहे हैं?
देखिए, ये बहुत कोऑर्डिनेटेड एफर्ट इसको हम कहते हैं, दोनों मिलके हमेशा से किया है, फिलिस्तीन को बनाने में, को बांटने में, और फिर उसके बाद इज़राइल के बनाने के लिए इन नासिर का बहुत बड़ा रोल था, और ये जितने भी थे ग्रुप्स जितने बने थे उससे पहले यही ग्रुप बने थे और इन्हीं ने इज़राइल के बनाने में मदद की थी, इन्हीं ने मैसेकर्स किए थे, फिर बाद में आर्मी बनी, यही लोग आर्मी में बाद में बने, और इसराइल ने हमेशा इन ग्रुप्स को बरकरार रखा। इनके पास फौज, इनके पास असलहे हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाती है और इनको लड़ने के बारे में बताया जाता है, फिर इनको ऊपर से आर्मी और वहाँ की पुलिस जो है उनको प्रोटेक्ट करती है उनके, और ये लोग जितने भी, इसमें बहुत से लोग जो है वो रिटायर्ड होते हैं आर्मी से या एयरफोर्स से या नेवी से, इसमें इन तहरीकों में जुड़े हुए हैं और ये लगातार इनके ऊपर हमले करते हैं, इनको मारते हैं, बेगुनाह लोगों को मारते हैं और इनको इनका साइकोलॉजिकल भी वो किया जाता है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ये मारने से इनको गुरेज ना हो। तो ये काफ़ी वक्फे से बन रहा है। देखिए 67 के बाद से जंग जो हुई थी जिसमें उन्हीं ने ये इलाके कब्जा किए थे, जिसके अंदर के जेरूसलम का बाकी हिस्सा जो था वेस्ट जेरूसलम और फिर उसके अलावा ईस्ट जेरूसलम और फिर उसके अलावा मकबूजा इलाके जो दोनों हैं वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप, उसके उसके अंदर जितनी कॉलोनीज इन्हीं ने बनाई ज़मीन को छीनने में, फिर उसके बाद वहाँ पे कॉलोनीज बनाई थी, उन सब में इनकी बहुत बहुत बड़ा रोल था। उसमें भी ये आगे आगे रहते थे, अब वहाँ की पुलिस और फौज के साथ मिलकर चलते थे। मेरा मानना यह है कि ये उनकी जो फौज है उसी के एक हिस्सा होते हैं, उसके जो लोग होते हैं, ये जो तंजीमें हैं, और इन्हीं ने जो ख़ास तौर से यू नो दहशत में इनको ट्रेन किया जाता है और ये दहशत फैलाते हैं वहाँ पे। फिर इनके बाद में होता है कि पुलिस मिलिट्री इनके सपोर्ट में वहाँ पे आ जाती है। तो इसी तरीके से इन इनकी बस्तियाँ लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और ये बहुत तरीके से करते हैं। ये फिलिस्तीनी कपड़े पहन के फिलिस्तीनियों के बीच में घुस के उनको वहाँ पे इन्हीं ने मारा है, रिपोर्ट ये भी आई हैं। फिर उसके बाद ये भी है, ये पुलिस के साथ आगे पहुँच जाते हैं वहाँ पे वरगलाते हैं, जब बच्चे कुछ वहाँ पे हरकत करते हैं तो पुलिस को पकड़वाने में मदद करते हैं। ये उनके मकानों के पे नज़र रखते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन लड़का आया है, ये फिल्में बना लेते हैं उन लोगों की कि जो लोग जो बच्चे इस वक्त इंतफादा में इन्वॉल्व हैं उनके घरों के पे निशान लगा देते हैं, वहाँ तक बाद में फ़ौजियों को पहुँचाते हैं या उनकी मदद से उनके घरों को मिसमार करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो वहाँ पे फैला हुआ है और इसके अंदर वहाँ पे इनको ले जाके बसाया जाता है, इनको पैसे मिलते हैं, इनके मकान इनके जो बनते हैं फिर उसके बाद इनको पैसे भी दिए जाते हैं। तो ये एक तंजीम है जो बहुत बड़ी इसराइल की है। इसराइल की बेसिक पॉलिसी हमेशा से एक ही रही है कि ज़मीन पर कब्ज़ा करो, फिर उसके बाद वहाँ पर कॉलोनी बनाओ अपनी, फिर और आगे बढ़ो, उसकी ज़मीन को कब्ज़ा करो। इसीलिए इसराइल ने अपना कोई जो ऑफिशियल मैप है अभी तक नहीं बनाया, बल्कि वो मैप जो है हमेशा बढ़ता ही चला जा रहा है। अब ग्रेटर इसराइल की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद इनके पास गोलान हाइट्स का भी एक हिस्सा इन्हीं ने कब्जा कर रखा है, उसको भी छोड़ने पे तैयार नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनकी मदद इस वक्त इजिप्ट की भी फौजें कर रही हैं, ये बड़ी अफसोस की बात है। उन्हीं ने भी वहाँ पर वो टनल्स बंद कर दी, उसमें पानी भर दिया, जो जिनके ज़रिए सामान जा रहा था वहाँ पर, रफा जो उनकी बॉर्डर चेक पोस्ट है उसके ऊपर भी तंबियां लगा दी। पहले तो बिल्कुल ही बंद कर दिया था और अभी भी कोई ख़ास नहीं खुला है, बीच बीच में खोलते हैं। फिर उसके अलावा उनके पास सामान नहीं बन रहा, बिल्कुल दोनों ने एक तरफ से तो सहयोनी फौजें हैं तो दूसरी तरफ से इजिप्ट ने जिस तरीके से सख्तियाँ वहाँ पर कर दी हैं, डीमिलिटराइज जोन जो 2 किलोमीटर लंबा बना रहे हैं उसमें बहुत से मकान गिराए जा रहे हैं, उसकी वजह से इनको मुसीबत है, सामान नहीं पहुंच पा रहा, ख़ासतौर से दवाओं की वहाँ पे बेइंतहा कमी है।
जी
बकौल फिलिस्तीनियों की कि ये एक ओपन जेल की तरह से खुला हुआ जेल है
जी, जिसमें हर तरफ से जुल्म हो रहे हैं,
दोनों तरफ से लोग मारे जा रहे हैं। इसी तरह से वहाँ पे है जो जेरूसलम है उसका बिल्कुल उन्हीं ने एक नया नक्शा बना दे रहे हैं, वहाँ से उसको सहयूनी कैरेक्टर भी दे रहे हैं।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँ। चलते हैं एक बार फिर कराची। साबिर साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसा कि रहबर इनकलाब इस्लामी ने कल के अपने खिताब में, यानी बुध के अपने खिताब में ये फरमाया कि पिछले 60 साल से ज़ायद अरसे से दुश्मन की ये कोशिश रही है कि फ़िलिस्तीनी उमंगें और फ़िलिस्तीनी अकदार, और या यूँ कहा जाए कज़िया फ़िलिस्तीन को फरामोश कर दिया जाए। लेकिन ना सिर्फ ये कि फ़िलिस्तीनी उमंगें फरामोश ना हो पाई, बल्कि फ़िलिस्तीनी आवाम नौजवानों में ख़ासतौर पर रोज़ बरोज़ बेदारी बढ़ती गई। ये जो रोज़ बरोज़ फ़िलिस्तीनी आवाम में बेदारी बढ़ती जा रही है, इसकी वजह, इसका सबब क्या आपके ख्याल में?
जी बहुत बहुत यानी बहुत खूबसूरत बात फरमाई है कल रहबर इनकलाब इस्लामी ने, कि जिसमें आपने फरमाया है कि इसको, इस मसले को गुज़िश्ता 60 बरस से ये कोशिश की गई थी कि किसी तरह से फरामोश कर दिया जाए और इसको पसे पुश डाल दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि इसको पसे पुश डालने में दीगर जो इस्लामी नाम निहाद जो मुसलमान ममालिक हैं, जो बादशाहतें हैं, जो अरब बादशाहतें हैं, उन्होंने अपने ज़ाती मफादात के हुसूल के लिए पूरी पूरी ये कोशिश की कि उनकी बादशाहतें कायम रहें और फ़लस्तीन का मसला जो है वो पसे पुश डाल दिया जाए। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ, एक नहीं 100 मरतबा सैल्यूट करता हूँ इस अजीम क़यादत को कि जो सरजमीन ईरान पर जो मौजूद है इस वक्त, ना सिर्फ वो सरजमीन ईरान के लिए बल्कि हम उसको पूरी दुनिया के अंदर बसने वाले मुस्लिमीन की क़यादत तस्वूर करते हैं। और मैं सैल्यूट करता हूँ आपको कि आप ही की वजह से, रहबर इनकलाब इस्लामी ही की वजह से और इमाम खुमैनी की उन कोशिशों की वजह से कि जो इनकलाब इस्लामी के बाद मसला फ़लस्तीन के लिए जो शुरू की गई, मैं समझता हूँ कि ये सारे का सारा जो क्रेडिट जाता है वो सिर्फ और सिर्फ हज़रत इमाम खुमैनी और आपके बाद रहबर इनकलाब इस्लामी हज़रत आयतुल्ला खामनाई की शख्सियत और उनकी ज़ात मुकद्दसा को जाता है कि जिन्होंने तमाम तर मुश्किलात और मसाइब के बावजूद आज भी आप देखें कि अगर चारों तरफ से शिकंजे सख्त हैं, बहुत सारे मसाइल मैं समझता हूं कि ईरान की मईशियत और मुख्तलिफ मामलात के अंदर होंगे, लेकिन सैल्यूट पेश करता हूं कि आपने एक मरतबा फिर जो है वो पूरी दुनिया को इस तरफ मुतवज्जे कर दिया है कि ईरान ने जो ये कहा है कि वो फ़लस्तीनियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे और फ़लस्तीनियों की मदद जारी रखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि यही वो जज्बा और वलवला है जो मुसलमानों की तरफ से फ़लस्तीनियों की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है और फ़लस्तीन के आवाम भी इस बात को जानते हैं कि ये जो हमारे पास जो हमारी पुश्त पर जो लोग इस वक्त खड़े हैं वो भले चंद ही हैं, लेकिन उन्होंने इस बात का तहैया कर रखा है कि खा कुछ भी करना पड़े, खा कैसे ही हालात हों, हम फ़लस्तीन के आवाम को नहीं छोड़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि हम यहाँ पर पाकिस्तान के आवाम भी आज इसी बात का एक मरतबा फिर अदा करते हैं कि हम फ़लस्तीनी भाइयों को किसी मैदान में तना नहीं छोड़ेंगे, अपनी सियासी अखलाकी और शरई जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस मसला फ़लस्तीन को अपनी अव्वलीन तरजीहात के अंदर रखते हुए फ़लस्तीनियों की हर मुमकिन मदद के लिए हर दम तैयार रहेंगे। और यही वो बात है कि जो फ़लस्तीनियों को तकवीत बख्शती है, जो पहले भी आपने बात की थी कि क्या वजह है कि ये तहरीक बढ़ती चली जा रही है और क्यों, तो मैं समझता हूँ कि यही वो बात है जो मुस्लिम दुनिया से आनी चाहिए, जो सिर्फ ईरान और पाकिस्तान से नहीं बल्कि दीगर भी ममालिक से, दीगर भी इस्लामी क़यादतों को चाहिए कि वो इस मसले को समझें और इस बात की तरफ मुतवज्जे हों कि ये जो अंदरूनी छोटे छोटे मसाइल के अंदर आज हम लोग जो फंसे हुए हैं, ये सारे के सारे मसाइल किसके पैदा करता है। मैं समझता हूँ कि ये तमाम तर मसाइल की जड़ अगर ढूंढने निकलेंगे तो बिल आखिर शैतान बुजुर्ग अमरीका और उसकी नाजायज औलाद इसराइल तक जा पहुँचेंगे कि ये तमाम साजिशें सहूनिज़म का हिस्सा हैं कि आज सरजमीन फ़लस्तीन से लेकर शाम व लुबनान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, लीबिया और इसी तरह नाइजीरिया में आप देखें, इसी तरह सूडान में देखें, कोई खित्ता जो है वो इस वक्त जो जहां पे भी मुसलमान ममालिक है या इस्लामी हुकूमत है, कोई खित्ता इस वक्त जो है वो सेहूनी साजिशों से बचा हुआ नहीं है। तो मैं समझता हूं कि फ़लस्तीनियों को ये स्पिरिट चाहिए। फ़लस्तीनी हमसे पैसा नहीं मांगते, हमसे असला नहीं मांगते, हमारा जो फ़र्ज़ है वो यही है कि हम उनकी पुश्त पर खड़े हों, हम उनकी पुश्त पराई करें, हम यही कर सकते हैं कि हम उनकी जद्दोजहद की हिमायत करें और खुलकर हिमायत करें और शैतान को शैतान कहे और रहमान को रहमान कहे। और ये आज मैं समझता हूँ कि तमाम मुस्लिम हुक्मरानों को रहबर इनकलाब इस्लामी हज़रत आयतुल्लाह उल उज़्मा खामनाई की ये पैरवी करनी चाहिए कि मसला फ़लस्तीन दुनिया इस्लाम के अव्वलीन मसाइल में से एक अहम तरीन मसला है।
बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब। मैं आपसे यहाँ पर यह पूछना चाहूँगा कि पिछले चंद महीनों के दौरान ये देखा गया कि हत्ता यूरोप की मुख्तलिफ पार्लिमानों ने, जिसमें स्वीडन है, जिसमें इटली भी है, हत्ता वेटिकन है और भी कई ममालिक की पार्लिमानों ने एक आज़ाद फिलिस्तीनी ममलिकत के क़याम के हक़ में मंजूरी दे दी। और बात है कि ये उनकी हुकूमतें इस सिलसिले में कितना संजीदा फैसला करती नहीं करती, लेकिन मैं पार्लिमानी को बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर है कि पार्लिमानों में इस तरह की करारदादों का मंजूर होना कोई मामूली बात या अम्र नहीं है। ये तो यूरोप का रहा मसला। अभी कल की बात है कि जनरल असम्बली के इजलास में फिलिस्तीनियों के हक़ में कम से कम 5 करारदादें मंजूर हुई हैं। इस तरह से फ़िलिस्तीन, आपको याद होगा कि एक मुबसर मुल्क की हैसियत भी अख्तियार कर चुका है अक़वामे मुत्तहदा के परचम तले। तो ये जो फ़िलिस्तीनियों के हक़ में आलमी सतह पर एक तरह से हमायत सामने आ रही है यूरोप और अक़वामे मुत्तहदा के प्लेटफॉर्म से, तो इस बात के पेश नज़र आप आइंदा जो फ़िलिस्तीनी कॉज है उसको किस तरह से देख रहे हैं?
देखिए, पहली बात तो यह है कि वहाँ पे यूरोप के अंदर ख़ास तौर से आम आवाम के अंदर यह तहरीक बहुत पॉपुलर होती जा रही है। वो दिन ब दिन हर रोज़ देखते हैं किस तरीके से उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उनकी फौजें किस तरीके से आ रही हैं। वहाँ पे एक बहुत पावरफुल मूवमेंट भी खड़ा हो गया है जिसको कहते हैं बायकॉट, इसराइली बायकॉट मूवमेंट, जिसके अंदर वो एकेडमिक्स यानी उनके जो पढ़ाई तालीम से मुतालिक चीज़ें हैं उसका बायकॉट कर रहे हैं, उनकी चीज़ों के कभी बायकॉट कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि अब ये उनके अंदर जो प्रोडक्ट आएंगे जो इसराइल के बने हुए होंगे उसके ऊपर ऊपर से लेबल लगेगा कि ये इसराइल का बना है, ताकि जो लोग नहीं ख़रीदना चाहते, जो इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, जो इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, उनको पता चल जाए कि दूर से कि ये इसराइली प्रोडक्ट है, उसको नहीं ख़रीदेंगे। तो एक बहुत बड़ा प्रेशर है और उसी प्रेशर की वजह से ये जो पार्लियामेंट्स हैं उनके अंदर ये रेजोल्यूशंस पास हो रहे हैं लगातार, और ये मूवमेंट बढ़ता चला जा रहा है। ये मूवमेंट अब महज यूरोप में नहीं बल्कि अमेरिका में भी है। मैंने कनाडा में भी इसको देखा और अमेरिका में भी इनके लोगों से मैं मिला, फिर यूरोप में तो उससे शुरू हुआ था और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, पब्लिक ओपिनियन बहुत बढ़ चुकी है, आजकल ब्रेकिंग न्यूज़ है, हर वक्त चैनल्स चलते हैं, तो जितनी भी खबरें हैं जो जुल्म हो रहा है फिलिस्तीनियों पे ये फौरन आ जाता है। ठीक है कि बड़े अखबार जो हैं यूरोप और अमेरिका के उस जुल्म के बारे में नहीं लिखते या उसके ऊपर चर्चा नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया में लगातार इस पर बातचीत होती है और उसके ज़रिए पहुँचाने की कोशिश होती है। बहुत सी वेबसाइट्स बन गई हैं इनकी हिमायत में, वो इसकी तरह से चल रहे हैं। फिर उसके अलावा जो दूसरे देश हैं एशिया और अफ्रीका के, वहाँ पहले से ये मूवमेंट थे, वहाँ पहले से इनको सपोर्ट थी। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि जो अरब ममालिक हैं उसमें जिस तरीके का मूवमेंट होना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा है। एक तो पहली बात तो ये कि अरब अपने मसलों में उलझा दिए गए हैं, उलझ गए हैं खुद ही से वहाँ की जिस तरह की हुकूमतें हैं, और दूसरी तरफ से वहाँ की जो हुकूमतें हैं जो अपने को लीडर करार देती हैं मुसलमानों का, अफसोस की बात यह है कि वो भी खुल के नहीं आते, खुली के नहीं आते, बल्कि वो उनके इंटरेस्ट इसराइल के इंटरेस्ट से जाके मिल गए हैं। ये बड़ी चौंका देने वाली बात है। अब वो खुद इसराइल के साथ बगैरादा उनके उनकी इंटेलिजेंस एक्सचेंज होती है, इंफॉर्मेशन वो एक्सचेंज करते हैं, और उनका इंटरेस्ट यह है कि वहाँ पर हमस जैसी जमात जो है वो ना उसकी हार हो जाए किसी भी सूरत से, और वो इसराइल की मदद करने पे तैयार हैं। इसराइल के खिलाफ जो बायकॉट था प्रोडक्ट्स का, वो बायकॉट प्रोडक्ट्स का अब हट गया है इन देशों में। इनका कहना ये हमने इसलिए हटा लिया कि WTO के तहत हम किसी मुल्क के ऊपर बायकॉट नहीं लगा सकते। इस तरह के बहाने लगा लगा कि उन लोगों ने कर दिया। उनका ट्रेड भी, इनडायरेक्ट ट्रेड जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा है, शुरू हो गया है, इनके प्रोडक्ट्स भी वहाँ आने लगे हैं। उस पर कभी कभी ऐसा होता है कि उन प्रोडक्ट्स पर मेड जहाँ के बने होते हैं इसराइल की मोहर नहीं लगी होती, लेकिन वो तीसरे कंट्री से भिजवा देते हैं। ट्रेड भी बढ़ रहा है इनकी तरह, ये बड़ी अफसोस की बात है। और इनको जिस तरह की सपोर्ट मिलनी चाहिए थी आलम इस्लाम से, वो सिवाय ईरान के मैं समझता हूँ और कोई दूसरा मुल्क नहीं है। ईरान एक ऐसा मुल्क है जो शुरू से उनके साथ शाना बशाना जुड़ा हुआ है, हर तरीके की मदद, माली और दूसरी तरह की जो इस किस्म की भी मदद उनको ज़रूरत होती है, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे या रीजनल लेवल पे या लोकल लेवल पे, वो सब मुहैया करा रहा है। बाकी सिर्फ बात करते थे, अब उन लोगों ने बात करना भी छोड़ दिया। ये चीज़ें हैं, ये बड़ी तकलीफ देह हैं। इसका असर मैं समझता हूँ बहुत पड़ेगा उनकी आवाम, अरब आवाम जो है या मुसलमान कहीं भी हों, उनका एक लगाव है फ़िलिस्तीन की तरफ से। फ़िलिस्तीन एक बहुत ख़ास स्पेशल स्टेटस रखता है हर मुसलमान के दिल में, क्योंकि वहाँ पे मस्जिद अल-अक्सा है जो क़िबला अव्वल है जैसे आपने बताया, उसको वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उससे छीना जाए। और जिस तरीके की कोशिश, देखिए इस वक्त इसराइल की पूरी कोशिश ये है कि जेरूसलम को बिल्कुल उसका जूश कैरेक्टर बना देना, लगातार बिल्डिंगें गिरा रहा है वहाँ पे, एक से एक जो इस्लामी कैरेक्टर है सिटी का उसको ख़त्म कर रहा है। और जो वेस्ट बैंक है उसको उन्हीं ने कह दिया कि ये तो उनका बिब्लिकल लैंड है और इसको वो कभी खाली नहीं करेंगे, और गाज़ा स्ट्रिप को वो दोबारा से कब्ज़ा करने की बात कर रहे हैं, तभी अगर तक हम कब्ज़ा नहीं करेंगे तब तक वहाँ पे जो मूवमेंट चल रहा है उसको हम रोक नहीं पाएंगे। और ये भी कह रहे हैं कि इसराइल की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, हालांकि वो बिब्लिकल लैंड नहीं है, तो उसको दोबारा से लेने, यही नहीं बल्कि उनका जो दूसरा मनसूबा है जो अरब फिलिस्तीनी है जो कि अरब इसराइल के बाशिंदे हैं, इसराइल में रहते हैं, अब उनको भी हटाने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है। और उन्होंने कहा है नेगीव में वो एक बड़ी बस्ती यहूदियों की बनाएंगे, जहां से हज़ारों की तादाद में जो अरब वहां पे हैं, फिलिस्तीनी जो पुराने वहां पहले से रह रहे थे फिलिस्तीनी, उनको जो कि ज़्यादातर बेदुइन हैं, उनको वहां से हटाया जा रहा है और इसराइल के अंदर से भी इनको निकाला जा रहा है। और इसराइल को एक प्योर ज्यूइश स्टेट जो कोट इन कोट कहते हैं उसको बनाने की कोशिश की जा रही है, और उसके अंदर इनको सपोर्ट भी है, उसके लिए पैसा भी ये इकट्ठा कर रहे हैं मगरबी देशों से, अमेरिका से, यूरोप से, और उसके लिए एक बड़ा फंडिंग भी लाई जा रही है, और वहाँ से धीरे धीरे, और इसको उनका उनका प्रेशर रहता है यूरोप और अमेरिका के ऊपर कि हमको तुम ज्यूइश स्टेट
मानो
कि हम ज्यूइश स्टेट हैं, अगर ज्यूइश स्टेट उनको आलमी बरादरी उनको मिल जाती है तो फिर उसके बाद उनको अरब मुसलमान और क्रिश्चियन दोनों को हटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिराज रहूँगा। साबिर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये अभी जॉन केरी जो इन दिनों मकबूजा फिलिस्तीन के दौरे पर है, तल अबीब में है, और उन्होंने ज़ाहिर है कि वहाँ पर सैनी लीडरों से भी मुलाकात की होगी, तल अबीब का दौरा करने से पहले जॉन केरी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ये बयान आया कि इंतफाज़े कुद्स दहशत गर्दाना कार्रवाई है, क्या अपने हक, अपनी सरजमीन, अपनी नामूस, अपनी इज्जत, अपनी शरफ, अपनी अजमत का दिफा करना दहशतगर्दी है?
देखें मेरे भाई, अमेरिका की आप बात कर रहे हैं और अमेरिका इस वक्त क्या, मैं समझता हूं कि इसकी तो बहुत लंबी एक दास्तान है, 200 साल दास्तान है दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की, कि जिसको अगर बयान करने बैठे तो शायद आज की पूरी रात भी कम पड़ जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस बयान पर कि दुनिया को ताज्जुब नहीं करना चाहिए कि जो अमेरिकी वजीर खारजा की तरफ से आया है। मैं इससे भी आगे एक बात यहाँ पर करना चाहता हूँ कि अभी गुज़िश्ता दिनों ही, बल्कि दो दिन कबल शायद बात है, कि बाराक ओबामा कहीं पर ख़िताब करते हुए ये कह रहे थे कि हमें अमरीकी आवाम की सलामती जो है वो बहुत ज़्यादा अजीज़ है। ठीक है, आपको अजीज़ होनी चाहिए अमरीकी आवाम की सलामती, आप अमरीका के सदर हैं, लेकिन आप ये तो बताएं कि आपको अमेरिका की आवाम की सलामती क्यों दरकार है? आखिर आपने जो हरकतें की हैं, आपने जो काम अंजाम दिए हैं, आपने जो, और आपसे पहले के जो जो अमेरिकी सुदूर ने जो जो हरकतें अंजाम दी हैं, जो आपने पूरे एशिया को आगो खून के अंदर जलाया है, आप ये क्यों अपने आवाम को नहीं बताते कि आपने अफगानिस्तान में क्या किया, आपने इराक में क्या किया, आपकी ईमा पर यमन में आज क्या हो रहा है, आपकी ईमा पर लीबिया में क्या हुआ, आपके ही कहने पर जो है वो दीगर जो रियासतें हैं वहां पर जो दहशतगर्द ग्रोहों को, अलकायदा जैसे ग्रोहों को और फिर अब दाइश जैसे ग्रोहों को जो आपने पैदा किया है शाम में और इराक में, तो आप ये क्यों अपनी आवाम को नहीं बताते कि हमने ये दहशतगर्द पाले हैं, हमने ये दहशतगर्द बनाए हैं? आप क्यों अपनी आवाम को ये बताना भी भूल जाते हैं अमरीकी सदर साहब कि इसराइल जो दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा दहशतगर्द है, कि जो रोज़ाना की बुनियादों पर मजलूम और निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम करता है, आप क्यों अपनी आवाम को ये नहीं बताते कि इस इसराइल नामी दहशतगर्द को सारे का सारा असलहा जो कि अरबों डॉलर की मकदार में बनता है वो हम ही देते हैं, यानी अमरीका ही देता है, तो आप ये बातें क्यों अपनी आवाम को नहीं बताते? मैं अमरीकी आवाम को भी आज पैगाम देना चाहता हूँ एक तालिबे इल्म होने की हैसियत से कि अपने हुक्मरानों से आप जान छुड़ाएं। ये आपको गुमराहकुन वावेला करते हैं, ये गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करके अमरीकी आवाम को भी बेवकूफ़ बनाते हैं, और ये जो अमरीकी पॉलिसियाँ हैं जो अमरीकी हुकूमत की, इन्होंने ना सिर्फ इसराइल की हिमायत की है जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है जिसकी दहशतगर्दी इनको नज़र नहीं आती, बल्कि आप फलस्तीन से लेकर आप पाकिस्तान तक आएँ, किसी भी खित्ते में एशिया में चले जाएँ, वस्ती एशिया को देख लें, कोई खित्ता इनकी दहशतगर्दाना साजिशों से, इनकी दरअंदाजियों से, इनकी फौजी मुदाखलतों से, इनके जो अरब जो अलाइज़ हैं उनकी दहशतगर्दाना साजिशों से कोई खित्ता इस वक्त पाकिस्तान समेत मौजूद नहीं है, तो वो दहशतगर्दी तो इनको नज़र ही नहीं आती। जबकि इसके मुकाबले में जो फलस्तीन जो ऑक्यूपाइड हुआ है, जिसको गासिब इसराइल ने ऑक्यूपाइड किया है, वहाँ पर आप यूनाइटेड नेशन को ही अगर मानते हैं, जो कि एक मैं समझता हूं डेड इदारा है, लेकिन अगर आप उसको मानते हैं अमरीकी सदर साहब, तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अंदर इस किस्म की जद्दोजहद को दहशतगर्दी नहीं कहा जाता कि जिनकी सरजमीनों पर आप काबिज हो जाएं, जिनके घरों को आप मिसमार कर दें, जिनके बच्चों को, माओं को, बेटों को कत्ल कर दें, और उनको ये भी हक ना हो कि वो पत्थर और खंजर की मदद से जो है वो अपना दिफा करें, अपने मुकद्दसात का दिफा करें, अपने शायर इस्लामी का दिफा करें, अपनी जो मजहबी रसूमात का दिफा करें, तो ये हक तो मैं समझता हूँ कि उस यूनाइटेड नेशन के चार्टर में भी उन कौमों को दिया गया है कि जिन पर ऑक्यूपेशन हुए हैं, जिन पर गासिबाना तसल्लुत हुए हैं। तो उसकी रूह से भी अगर आप देखें तो फलस्तीनियों की जो जद्दोजहद है वो बिल्कुल आइनी, कानूनी और इखलाकी और सियासी हवाले से और दीनी और शरई हवाले से भी मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जायज और रास्त इकदाम है। और दूसरी तरफ जो अमेरिका की सरपरस्ती में जो कुछ भी हो रहा है, जो इसराइल को मदद की जा रही है, जो दहशतगर्दी का सबसे बड़ा मौजद है, और इसी तरह शाम के अंदर आप देखें कि 1 लाख से ज्यादा लोग दाइश ने मार दिए। ये दाइश को अमरीकी असला कौन देता है? क्या दाइश के लोग अमरीका से चुरा कर लाते हैं वो असला? नहीं, ये अमरीकी जहाज वहां पर जो है वो बमबारी करने के बहाने आते हैं और वहां पर उनको कार्गो के जरिए जो है वहां उनको उनके ठिकानों पर असले फेंके जाते हैं, उनके बारूद फेंका जाता है कि भाई ये लो, तुम जो है वो आवाम को कत्ल करो। इन्होंने इराक में क्या किया? अबू गुरैब जेल को लोग भूल गए क्या? गुआंतानामो को भूल गए क्या? इसी तरह इन्होंने जो जो दाइश के जो इस वक्त जो सरबराह है जिसको अबू बकर बगदादी के नाम से जाना जाता है, ये अमरीकी ही तो थे जिन्होंने इराक।
चलते हैं दिल्ली स्टोरेज जहाँ पर कमर आगा साहब मौजूद हैं। कमर आगा साहब, आप देखें कि अमरीकी जो पॉलिसी है तो जाहिर है कि वो खुलकर सयूनी हुकूमत की हमायत की पॉलिसी है, लेकिन कभी कभी अमरीकी हुकाम गरब उदन और मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस में जो गैर कानूनी सयूनी बस्तियों की तामीर का मामला, उस पर बहरहाल कुछ बात कर देते हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे से न सिर्फ ये कि इस सिलसिले में कोई बयान नहीं आया जो गैर कानूनी सयूनी बस्तियाँ तामीर की जा रही इसराइल की तरफ से, बल्कि जैसा कि जॉन केरी का बयान आया है कि इंतफाज़े खुश दहशत गर्दाना कार्रवाई है, तो क्या आप ये समझा जाए कि इलाके की सूरत हाल से फ़ायदा उठाकर अमेरिका एक बार फिर सयूनी हुकूमत को फिलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ और फिलिस्तीन के ख़िलाफ़ किसी बड़ी कार्रवाई या किसी बड़े मंसूबे की तरफ आगे बढ़ाने की कोशिश करें?
जी, मैंने पहले भी बताया, वो देखिए उन्हीं ने, इसराइल जो है वो उनका सबसे ट्रस्टेड एलाई है वहाँ के ऊपर, और वो उनके अमेरिका के जितने भी इंटरेस्ट हैं, मफाद हैं वहाँ पे उस पूरे रीजन में, उसको उसकी हिफाजत करता है। उसके लिए उनको बिलियंस ऑफ डॉलर वो देते हैं, और वो उसको दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि ये हमारी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसका पार्ट भी है। तो ये एक बहुत पुराना एलाइंस है, आज का नहीं है, ये 100 साल से भी ज़्यादा का है। ऑटोमन पीरियड में, उस्मानी हुकूमत के पीरियड में बना था और तब से चल रहा है, और इस हुकूमत ने जब से आए उसको सपोर्ट देते हैं, उसको बनाते हैं, उसको पैसा देते हैं, चाहे बस्तियां बने चाहे वहाँ पे जो भी हों, उन सब का पैसा ज़्यादातर अमेरिका से आता है। कुछ पब्लिकली इकट्ठा करते हैं, कुछ गवर्नमेंट के थ्रू से इनडायरेक्टली उनको वहाँ पहुँचाया जाता है। देखिए 3-4 बिलियन तो ऑफिशियल मिलता है, फिर उसके बाद उनको बैंक गारंटीज़ मिलती हैं जो दसियों बिलियन डॉलर की होती हैं, जिससे फिर उनको ट्रेड वहाँ पे फ्री ट्रेड की परमिशन है, जितना जी चाहे वो एक्सपोर्ट करें यूरोप और अमेरिका में, उनको उस तरह से वो कमाते हैं। फिर उनको असलहे दिए जाते हैं, फिर उसके बाद उनको असलहे बनाने की भी परमिशन, जो अपनी टेक्नोलॉजी है वो उनको दी जाती है। इस तरीके से वो कर रहे हैं और वो उसमें आगे लगातार बढ़ रहे हैं। अगर आप देखें तो उनकी पॉलिसी यही थी। वो अब पहले उन्हीं ने कहा था कि हम इसकी गारंटी हमेशा, अमेरिका उसका गारंटर है, उसको कभी भी वहाँ पे नहीं जाने देगा, और वो यही चाहता है। अब उनका इसराइल का एक ग्रेटर इसराइल बनाने का प्रोग्राम है, उसको लगता है कि उसको उसके जो इसराइल के अंदर जो मकबूजा इलाके हैं उनके ऊपर कब्जा वो दोबारा से कर लेगा, और उसमें उसको कोई परेशानी नहीं आती। अरब अपने मसाइल में उलझे में हैं, तो लिहाजा वो आगे बढ़नी, अगर उसने, मैं समझता हूँ, गाज़ा स्ट्रिप पे दोबारा से कब्ज़ा किया अपनी फ़ौज भेज के, तो इसके मतलब ये हैं कि कुछ ज़माने के बाद वो सीनाई के ऊपर भी इसी तरह से कब्ज़ा करने की कोशिश करेगा, जो उसने जहाँ से उसने विड्रा किया है इजिप्ट में, वो फिर वहाँ पे भी यही उसका आर्गुमेंट होगा कि वहाँ पे दहशतगर्द बहुत हो गए, उन दहशतगर्द से इसराइल को ख़तरा हो रहा है, उस ख़तरे को रोकने के लिए हमें चाहिए। दूसरी तरफ ये भी है, वो उसका मानना ये है कि इसराइल के चारों तरफ जितने भी देश हैं, यहाँ पे छोटे छोटे मुल्क होने चाहिए, बड़े मुल्क नहीं होने चाहिए, उनकी फ़ौजें बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए वो अपना, ताकि इसराइल को किसी किस्म का खतरा ना हो। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं जो जो वेस्टर्न नेशंस का प्लान है सीरिया को लेके कि इसको पार्टीशन कर देना चाहिए, इराक़ को लेके कि उसका पार्टीशन हो जाना चाहिए तीन अलग, ये सब उससे जुड़ा हुआ है, ये लगातार उनकी मदद कर एक जो स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं वो पब्लिक कंजम्पशंस के लिए होते हैं, उसके बहुत उसमें हकीकत नहीं होती। वो एक तरफ तो ये ज़रूर कहते हैं कि हम फ़िलिस्तीन के साथ हैं, फ़िलिस्तीन को देखिए, फ़िलिस्तीन एक ऐसा मुल्क है दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसको अक्वामे मुत्तहदा ने पार्टीशन किया और ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसको दोबारा से उसको वहाँ पे कायम करे, और इसलिए सभी उसके उससे जुड़े रहते हैं। उसके बाद में जब इसका मसला होता है, जब वहाँ पे ऑक्यूपाइड टेरिटरीज का मसला आता है तो टेक्निकल ट्रस्ट में तो ज़रूर यूज़ करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल की मदद करते हैं। और ये आज से नहीं, ये पॉलिसी शुरू से चल रही है। इसराइल के पास न तो इतनी हैसियत थी, न इतना पैसा था, न इतना वो था, असलहे थे उसके पास, अगर उसको ये मदद न मिलती तो मैं समझता हूँ आज यहाँ तक हरगिज़ नहीं पहुँच पाता। और अब उसको यहाँ तक पहुँचाने के बाद अब उसको प्योर ज्यूइश स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है, और फिर उस ज्यूइश स्टेट के बनाने के बाद यू नो वहाँ से यानी अरब निकाले जाएंगे, उन तमाम जगहों पे इन्हीं का कब्जा होगा, और फिर उसके बाद मैं समझता हूँ ग्रेटर इसराइल की तरफ वो आगे बढ़ेंगे।
जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें इनायत किया। चलते हैं एक बार फिर कराची स्टूडियो। साबिर साहब, खदशात का इजहार किया कमर आगा साहब ने, पिछले 60 साल से ज्यादा अरसे से तहरीक चल रही है और ज़ाहिर है कि रोज़ बरोज़ मजबूत और मुस्तहकम होती जा रही फिलिस्तीनी आवाम की तहरीक और जद्दोजहद, और ये बात सब जानते हैं कि फिलिस्तीन के मसले को ताकत के ज़रिए हल नहीं किया जा सकता, उसका एक वाहिद हल ये है कि फिलिस्तीन की तकदीर का फ़ैसला करने का हक़ फिलिस्तीनी आवाम को दिया जाए और फिलिस्तीनी पनाह गुजीनों को वतन वापसी का हक़ दिया जाए, और ये इस्लामी जमहूरी ईरान का देरीना मौक़िफ़ है। क्या आप समझते हैं कि इस मसले के बग़ैर, यानी इस तरीक़े को इस्तेमाल के बग़ैर कि इलेक्शन हो, रेफरेंडम हो और पनाह गुजीनों को वापस आना दिया जाए, इसके बग़ैर क्या ताकत के ज़रिए मसला हल किया जा सकेगा? मेरे पास 2 मिनट का वक्त है।
देखें, मैं समझता हूं कि ये जो हल पेश किया गया है ये बहुत ही उम्दा और बेहतरीन हल है कि तमाम जो है वो फ़लस्तीनी जो 1948 के वक्त से फ़लस्तीन के बासी थे, जिनको जिलावतन किया गया, वो अपने वतन में आए, खा उसके अंदर जो भी मतलब से उनका ताल्लुक़ हो, वो ईसाई फ़लस्तीनी हो या यहूदी फ़लस्तीनी हो या मुसलमान फ़लस्तीनी हो, वो सब के सब फ़लस्तीन आए और एक रेफरेंडम के ज़रिए एक यूनिफाइड गवर्नमेंट वहाँ पे तश्कील दें, और वो गवर्नमेंट इस बात का फ़ैसला करे कि बाद में आने वाले जिनको आबादकारी करने के लिए यहाँ पर गासिब इसराइली रियासत लेकर आई थी, उनको जो है वो अगर रहने का हक दिया जाए, बतौर फ़लस्तीन को वो कबूल करें तो उनको रहने दिया जाए, नहीं तो फिर उनसे कहा जाए कि भाई आप जहाँ से आए थे आप वहाँ तशरीफ़ ले जाए, उनको वहाँ भेज दिया जाए, और जिनको लाखों की तादाद में जिन फ़लस्तीनी अरबों को उनके मुल्क से उनके घरों से बेदखल किया गया है उनको उनके वतन में वापस रिस्टोर किया जाए। यानी खुलासा ये कि फ़लस्तीनियों के हक के वापसी पर पूरी दुनिया के अंदर एक यूनिफाइड स्टेटमेंट होना चाहिए, यूनिफाइड उसकी जो है सपोर्ट होनी चाहिए कि फ़लस्तीनियों का हक के वापसी नागुज़ीर हो चुका है, फ़लस्तीनियों का जो हक के खुद इरादी है वो नागुज़ीर हो चुका है, वो फ़लस्तीनियों को दिया जाए। दूसरी सूरत यह है कि जिस तरह का ये गासिब इसराइल जंगी जुनून से जो पागल एक मैं समझता हूँ कि एक है एक गासिब रियासत है, इस जैसे गासिबों के साथ मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे मुजाहिदीन ने हमास और हिजबुल्ला ने जो स्ट्रेटेजी रखी है कि इनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम उस हक के वापसी के हमली यानी किसी फार्मूले पर ना पहुँच जाए तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त तक फलस्तीन की आज़ादी जो है वो इस मुसल्ला
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने हमारे मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। जाहिर है कि कौमों का हक ख़ुद कौमें अपने ही आज़्म इरादे की बुनियाद पर लेती हैं, और अगर उन कौमों के साथ जो इंसाफ पसंद हुकूमतें हैं वो भी अगर आ जाएं तो जाहिर है कि यह अमल तेज़ तर हो जाता है, और फ़िलिस्तीनी आवाम ने अब तक ये साबित किया है कि हम निहत्थे ज़रूर हैं लेकिन हमारे आज़्म, हमारे हौसले और हमारी हिम्मत बहुत बुलंद है, और ये वजह है कि आज तक गासिब सहयोनी हुकूमत फ़िलिस्तीनी तहरीक को कुचलने में पूरी तरह से नाकाम रही है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे अली अब्बास इज़्ज़ी और दीगर साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।